भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरतमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद् भागवतम से पाठ स्कंद 4 अध्याय 25 श्लोक संख्या 42। कस्या मनस्ते भुवि भोगी भोगयः स्त्रिया न सज्जेत भुजयो महाभुज। जो नाथ भर्ग अधिमलं घृणद्धत् स्मितावलोकेन चरिता अपोहितुम्। कस्या किसका मनहा मन ते तुम्हारा भुवि इस संसार में भोगी भोग यह सर्प के समान शरीर वाला स्त्रियः स्त्री का मन नहीं शरीर न नहीं सज्जेत आकर्षित हो जाता है भुजयः भुजाओं द्वारा महाभुज हे बलिष्ठ भुजाओं वाले महाबाहु यह जो अनाथ वर्गा हम जैसी अनाथ स्त्रियों का अधिमनहा का संताप अलम सक्षम घृणा उद्धत छेड़छाड़ से स्मितावलोकेन आकर्षक हंसी से चरती विचरण करता है अपोहितुम कम शांत करने के लिए। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की हे महाबाहु इस संसार में ऐसा कौन है जो तुम्हारी सर्प शरीर जैसे भुजाओं से आकृष्ट न हो जाए। वास्तव में तुम अपनी मोहक मुस्कान तथा अपनी छेड़छाड़ से हम जैसे पतिविहीन स्त्रियों के संताप को दूर करते हो। हम सोचती हैं कि तुम केवल हमारे कल्याण के लिए ही पृथ्वी पर विचरण कर रहे हो। दोहराइए हे महाबाहु इस संसार में ऐसा कौन है जो तुम्हारे सर्प के शरीर जैसी भुजाओं से आकृष्ट न हो जाए। वास्तव में तुम अपनी मोहक मुस्कान तथा अपनी छेड़छाड़ से हम जैसे पतिविहीन स्त्रियों के संताप को दूर करते हो। हम सोचती हैं कि तुम केवल हमारे कल्याण के लिए ही पृथ्वी पर विचरण कर रहे हो। तात्पर्य जब किसी पतिविहीन स्त्री के साथ कोई पुरुष छेड़छाड़ करता है तो वह इसे कृपा समझती है। स्त्रियां सामान्यतः पुरुषों की लंबी लंबी भुजाओं से अत्यधिक आकर्षित होती है। सर्प का शरीर गोल होता है और पूंछ की ओर पतला होता जाता है। मनुष्य की सुंदर भुजाएं स्त्रियों को सर्प की भांति प्रतीत होती है और वे ऐसी भुजाओं का आलिंगन चाहती है। इसी श्लोक में अनाथ वर्ग शब्द अत्यंत सार्थक है। नाथ का अर्थ है पति और अ का अर्थ है रहित। जिस तरुणी के पति नहीं होता वो अनाथ कहलाती है, अर्थात उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। किशोरावस्था प्राप्त करने से ही स्त्री के मन में कामवासना हिलोरेन लेने लगती है, अतः पिता का धर्म है कि वयसंधि आते ही वो अपनी पुत्री का विवाह कर दे, अन्यथा पति न होने से वह अत्यधिक संतप्त रहेगी। इस आयु में जो भी व्यक्ति उसकी काम वासना को तृप्त कर दे वही उसके लिए संतोष देने वाला बन जाता है। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि वयसंधि में जो भी व्यक्ति स्त्री की काम वासना को तृप्त कर दे उसे वह आजीवन प्यार करेगी, चाहे वह जो भी हो। इस प्रकार इस संसार में तथाकथित प्रेम काम तुष्टि के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनाविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणा रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखानितंस। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जयतां सुरतौ पङ्गु मम मन्दामतिर्गते मत्सर्वस्वपदं भुजौ श्रीराधामदनमनो दिव्याद् बृन्दारण्यकल्पद्रुमदः श्रीमद् रत्नागर सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा श्रीलगोविंद देवो पृष्ठालिभिः मानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवट तटस्थित कर्षन् वेणु सुनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियस्तु नः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवार्षादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कई दिनों से हम लोग राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन सुन रहे हैं। बहुत ही जो विषय है दार्शनिक के तत्वों के ऊपर आधारित है और संपूर्ण रूप में हमारा जो भौतिक बंधन है उसको काटने के लिए सक्षम है। जैसे आज के श्लोक के तात्पर्य में तात्पर्य के अंत में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि इस संसार में तथाकथित जो प्रेम है काम तुष्टि के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जब जीवात्मा इस संसार में आता है तो उनके जो भगवत प्रेम है वो काम में रूपांतरित हो जाता है। जिस प्रकार जब हमें भगवान को भूल जाते हैं, जब क्योंकि इस आध्यात्मिक जगत में भगवान ही एकमात्र प्रभु हैं और सभी जीवात्माएं भगवान के सेवक हैं, दास हैं, दास दासियां हैं, परंतु जीवात्मा के मन में जो भगवान को छोड़कर अलग रहकर भोगने की इच्छा है, प्रभु बनने की जो इच्छा जब जन्म लेती है तो तुरंत भगवान की जो माया शक्ति है उसको कबलित कर लेती है। जब श्री व्यासदेव ने भगवान के अपने गुरु नारद मुनि के कथा अनुसार गंगा में स्नान करने के बाद तो उन्होंने ध्यान में बैठने के बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को दर्शन किए और साथ साथ में माया देवी को भी दर्शन किए। भगवान और माया देवी पास पास नहीं रहते हैं। जब व्यक्ति भगवान से मुख मोड़ लेता है तो तुरंत माया को फिर प्राप्त करता है। तो जैसे ही जीवात्मा भगवान के प्रेममय सेवा को छोड़ देता है, प्रेममय सेवा को से आनंद नहीं लेता और मन में भगवान जैसे प्रभु हैं वो प्रभु बनने की आशा करता है तो तुरंत भगवान की जो माया शक्ति उसको कबलित कर लेती है। क्योंकि जो जीवात्माएं हैं ये भगवान का एक शक्ति है, तटस्थ शक्ति है, वो प्रभु बनना चाहता है। उनका वो जीवात्मा का स्वाभाविक स्वभाव है कि वो एक स्त्री है, ये एक शक्ति है, भगवान की शक्ति है और भोग्या है, और भगवान जो है भोग करते हैं और जो शक्ति है आश्रय और विषय, जो विषय है जीवात्माएं हैं और आश्रय है जो भगवान है। परंतु जब भगवान से अलग हो जाता है जीवात्मा तो तुरंत उसको माया शक्ति कबलित कर लेती है, और क्योंकि वो भोग की इच्छा है इसलिए शास्त्र में हर जगह में मैक्सिमम जगह में जीवात्मा को पुरुष के रूप में वर्णन किया गया है, पुरुष पुरुष, क्योंकि वास्तव में पुरुष भगवान है, क्योंकि भोग करने की जो प्रवृत्ति रहने के कारण जीवात्मा के मन में हृदय में, तो शास्त्र में उसको पुरुष के रूप में कहीं कहीं वर्णन किया गया है। जैसे ही जीवात्मा इस भौतिक दुनिया में आना चाहता है, भोग करना चाहता है तो तुरंत माया ने उसे अपना कबलित कर लेती है और माया के त्रिगुण के बंधन में वो जीवात्मा आ जाती है। त्रिगुण के बंधन में आने के कारण जिस प्रकार इस भौतिक दुनिया में भी जैसे जेल होता है, कारागार होता है, तो उसी प्रकार जीवात्माओं को जो इस प्रकार जो दूषित मनोवृत्ति है, क्योंकि स्वाभाविक स्थिति है भगवान से प्रेम करना है और वहाँ आनंद लेना है, कि जब मन में इस प्रकार विकृत भावना आता है तो तुरंत उसका शुद्धिकरण चाहिए, भगवान उनको शुद्धि करना चाहिए जीवात्मा को, साथ साथ में उस व्यक्ति को एक इस प्रकार माध्यम एक साधन देते हैं भगवान कि तुम प्रयास कर लो, प्रभु बनने का प्रयास कर लो जाकर। तो जीवात्मा जो इस भौतिक दुनिया में आते हैं तो माया ने एक दुर्ग निर्माण करती है, जिस प्रकार इस दुनिया में जो दुर्ग है, जो जेल कारागार है, चारों जो दीवार हैं बहुत ऊंचा दीवार हैं और शीशा के टुकड़े लगे होते हैं, कंटा के तार लगे होते हैं, तो कैदी उससे पार करना बहुत मुश्किल होता है, उसको नहीं कर पाएगा। तो उसी प्रकार जो ये भौतिक दुनिया जो कारागार है इसको विद्वानों ने शास्त्र में जौनागार बोला जाता है, जौनागार, यानी स्त्री और पुरुषों में जो आकर्षण है इसके वजह से जीवात्माएं ऊपर नहीं जा पाते हैं। उस ये जो ये प्रमुख है, इसके साथ साथ बाकी धीरे धीरे इस ये प्रमुख बात को फॉलो करते हैं, स्त्री पुरुष के बीच में जो आकर्षण है, जैसे भागवत में वर्णन है, पुंस स्त्री और मिथुनी भाव एतर तयर हृदय ग्रंथि में आओ। तो उसी प्रकार जीवात्मा जो इस भौतिक दुनिया में आता है तो इस प्रकार एक बंधन कारागार में रहता है, और इस पर साधारण कारागार में कैदियों को वस्त्र प्रदान की जाती है, भिन्न भिन्न धर्म में वस्त्र दी जाती है। तो इस प्रकार इस कारागार में भी भिन्न धर्म में 84 लाख प्रकार वस्त्र हैं, उसमें से प्रमुख दो भाग की जाता है, पुरुष और स्त्री। पुरुष के रूप में एक प्रकार वस्त्र, सभी जोनियों में पुरुष स्त्री, क्योंकि भोग करने की भावना है। इस दुनिया में जीवात्मा जो भोग करने की जो प्रवृत्ति रखता है, लेकिन है ही स्वभाव में प्रकृति है, परंतु उन्होंने मन में इस प्रकार हृदय में भावना रखता है कि भोग की भावना, प्रभु होने का, प्रकृति की पर प्रभुत्व जताने की जो भावना रखता है, तो इसके वजह से उसको एक सत्य रज तम गुण के इस प्रकार एक वस्त्र प्रदान की जाती है और एक कठिन संघर्ष के साथ वो इस प्रकार विभिन्न प्रकार जो इंद्रियां प्रदान की जाती है, इंद्रियों के माध्यम से ये विषयों को प्राप्त करने के लिए, इंद्रियों के विषय को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते रहता है जीवन भर। मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, क्योंकि वास्तव में आध्यात्मिक जगत में कोई संघर्ष नहीं है। भगवान जो भोग करते हैं तो वो कभी भी कठिन श्रम नहीं करते, संघर्ष नहीं करते, स्वाभाविक आनंद है। और भगवान के जो क्रियाएं हैं वो भी स्वाभाविक है, पराश्य शक्ति विविध है, स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया आदि सब। भगवान के जो ज्ञान है, बल है, क्रियाएं हैं, वो अपने आप कार्य करती है, भगवान को इसमें से कोई प्रयास करना नहीं पड़ता, मेहनत नहीं करना पड़ता। परंतु यहाँ पर एक रोटी खाने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं है, प्राइम मिनिस्टर से लेकर एक छोटे भिखारी तक, तो उनको प्रयास करना पड़ता है, बहुत कठिन संघर्ष मेहनत करना पड़ता है। परंतु आध्यात्मिक जगत में ऐसे नहीं है, स्वाभाविक जीवन है, स्वतः जीवन है। भगवान जो भोग करना चाहते हैं तो भगवान क्या करते हैं ना, अपने वो आत्माराम है, अपने से एक सृष्टि करते हैं भोग करने के लिए। जैसे भगवान सच्चिदानंद विग्रह अपने से राधा रानी प्रकट करते हैं आनंद लेने के लिए, जिस प्रकार हम चैतन्य चरितमृत से प्राप्त होते हैं, किस प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वर्णन करते हैं कि राधा कृष्ण प्रणय विकृति आल्लादिन शक्ति रस्मत एकात्मनोप भूमि पुरा देहो गतो। तो बोलते हैं कि जो राधा और कृष्ण है एक ही वस्तु है, एक ही तत्व है, परंतु अनादिकाल से अपने को दो भाग में विभक्त की है अपना दिव्य आनंद प्राप्ति के लिए। परंतु अधुना अब क्या होता ना, चैतन्य वाख्यम प्रकट अधुना तद्वयम च ऐक्यम। तो अब क्या हुआ ना, राधा और कृष्ण फिर दोनों एक साथ हो गए हैं और चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। जब भगवान आनंद लेना चाहते हैं, वो बाहर से कोई भौतिक आनंद नहीं लेना चाहते, लेते हैं, क्योंकि जो माया देवी है वो भगवान का अधीन है, भगवान के पास में रहती है, पीछे पीछे रहती है और भगवान की सेवा करती है। पर भगवान उनसे उनके अधीन में क्यों आएंगे, माया देवी के अधीन में क्यों आएंगे और भौतिक आनंद क्यों लेंगे, क्योंकि भगवान तो सच्चिदानंद, माया उनको स्पर्श तक भी नहीं करती है। तो भगवान जो भोग करना चाहते हैं, आनंद दिव्य आनंद उपभोग करना चाहते हैं, तो उस समय क्या होता है ना, भगवान अपने को विस्तार करते, एक बहुश्याम, एक ही भगवान है, अनेक रूप में अपने को विस्तार करते हैं। जिस प्रकार हमें वृंदावन के लीला में हमें देखेंगे, जब ब्रह्मा जी ने भगवान के बछड़ों को, ग्वाल वालों को चुरा लिए, तो भगवान ने ये बाह्य लीला दृष्टिकोण से थोड़ा दुखी हो गए, तुरंत भगवान ने क्या किए, अपने को अनेक रूप में विस्तारित किए, अनेक बछड़ों के रूप में विस्तारित किए, एज इट इज, जैसे जैसे ब्रह्मा जी ने चुरा लिए थे, और अनेक ग्वाल वालों के रूप में विस्तार किए अपने को चतुर्भुज नारायण के रूप में। तो फिर एज इट इज भगवान ने इस प्रकार सेट, एक नया सेट बना दिए, यहाँ तक ब्रह्मा, यहाँ तक कि जो जो अपने अपने गाय थे, अपने बछड़ों को, वो भी पहचान नहीं पाए भगवान के रूप में जो बछड़े आए हैं, वो सोचे ये मेरे बछड़े हैं, और ज्यादा प्यार करने लगे सारे बछड़े, गायों ने बछड़ों से। और उसी प्रकार जो माताएं थे, जो ग्वाल वालों के, जो भगवान श्री कृष्ण के सखाओं के जो माताएं थे, वो भी ज्यादा से ज्यादा प्रेम करने लगे भगवान कृष्ण से, ये अपने अपने पुत्रों के हिसाब में। तो उसी प्रकार भगवान जो आनंद लेना चाहते हैं, वो बाह्य दृष्टि से भौतिक आनंद नहीं लेते हैं, तो अपने को विस्तार करते हैं और वो आनंद लेते हैं इस प्रकार। परंतु जीवात्मा जब आनंद लेना चाहता है, क्या करता है ना, बाहर से किसी व्यक्ति को ढूंढता है, क्योंकि वो हेल्पलेस है, उनका जीवात्मा का स्वभाव है वो आश्रित रहना, भगवान के प्रति आश्रित रहना और भगवान की सेवा करना और उससे आनंद लेना। परंतु स्वभाव कुछ है, वो और कुछ बनना चाहता है, प्रयास करना चाहते हैं, और इस प्रकार एक माया की जगह पे आकर एक प्रयास, वृथा प्रयास करता है। तो जीवात्मा जब इस प्रकार प्रयास करता है कि भोग भोगने के लिए, तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि किशोर देव गोस्वामी बोलते हैं कि देहापत्य कलोत्रादिशु निज सैन्यु अथस्वपि प्रमत्त तस् निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। वो इतना असहाय है इस अवस्था में, वो क्या करता ना, एक स्त्री ग्रहण करता है। स्त्री ग्रहण करने के बाद फिर अपना शरीर, पहले शरीर है, फिर अपत्य है, जब स्त्री ग्रहण करने के बाद फिर संतान प्राप्त होता है। देह अपत्य कलत्र, देह मतलब शरीर, अपत्य संतान है, और कलत्र स्त्री, आदिशु और सारे, बैंक बैलेंस है, जानवाहन है, धन दौलत है, बांग्ला है, जो भी कुछ जो भोग्य सामग्री है वो संसार में हम लोग बनाए हैं, इन सारे चीजें को वो व्यक्ति क्या मानता है, ये मेरा सैन्य, निज सैन्य सु अस्वस्व भी। क्यों यहाँ अस्वस्व है, क्यों ये सारे नष्ट हो जाएंगे समय क्रम में, ये सारे को सारे नष्ट हो जाते हैं। परंतु व्यक्ति इतना भोग में फंसा हुआ, बुद्धि विकृत हो चुका है, तो इन सारी चीजों को वो बोलता है ये मेरा सैन्य है। हम संसार में देखते हैं कोई व्यक्ति किसी को पूछेंगे आप क्या करते हैं, आपका क्या हालचाल है, कैसे रहते हैं, क्या रहते हैं, हाँ एक बेटा अभी इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, एक बेटा अमेरिका में डॉक्टर है, एक बेटा एक बेटी ये कर विवाह मैरिज हो चुका है, बेटी उनका पति इस प्रकार करते हैं, बैंक बैलेंस है और फैक्ट्री ठीक से चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो वो सोचता, दूसरे बंधु बोलता है हाँ बहुत आप बहुत सौभाग्यवान हैं आप। तो इस प्रकार व्यक्ति अपने को विस्तृत करता है, स्त्री के बाद फिर पुत्रों संतान उत्पादन होता है और धन दौलत है, इन सारे चीजों को वो अपना सैन्य सामंत मानता है, अपना सोल्जर मानता है, और उसके साथ एक प्रकृति के साथ संघर्ष करता है, क्योंकि असहाय है, स्वरूप स्थिति है, स्वाभाविक स्थिति है, भगवान की सेवा करना है, परंतु मूर्खतावश इस समाज में, संसार में आकर भोग करने का जो वृथा प्रयास रखता है, और इस समाज में वो अपने को इस प्रकार विस्तृत करता है और अपने को इस प्रकार मानता है कि सारे मेरा सैन्य सामंत है, मुझसे ये प्रकृति के साथ संघर्ष करने में सहायता करेंगे, और निश्चित रूप से मैं प्रकृति के साथ संघर्ष करूंगा और प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करूंगा और भोग करूंगा, इस प्रकार वृथा प्रयास जीवात्मा करता है, जबकि उसका स्वाभाविक स्थिति है भगवान की सेवा करना है। वहां पर और कुछ धर्म के जो जीवात्मा है स्त्री के वस्त्र धारण किए हैं, वो है ही स्त्री, प्रकृति के तटस्था शक्ति है, परंतु एक स्त्री के वस्त्र, त्रिगुण के एक वस्त्र धारण किए हैं, उनका मन में हालांकि स्त्री के रूप में है, परंतु उनका मन में भोग करने की भावना है, हृदय में मन में भोग करने की भावनाएं हैं, इसलिए संसार में हम देखते हैं कि बहुत से स्त्रियां पुरुष के वेश धारण करना चाहते हैं, नकल करना चाहते हैं, क्योंकि मन में भोग की भावना है। तो इसी प्रकार वास्तव में जो नाथ है, असली आज के श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं अनाथ वर्ग शब्द को प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन करते हैं कि नाथ जो शब्द है जिनके पति नहीं है, अनाथ, नाथ का है पति और अ का शब्द है रहित, जिनके पति नहीं है, वास्तव पति हैं भगवान, परंतु इसी दुनिया में हमें भगवान को भूल जाने के कारण एक दूसरे को पति रूप में, जिस प्रकार जो दूषित बुद्धि है वो पुरंजन को पति के रूप में प्राप्त करता है भौतिक संसार में। तो वास्तव में भगवान पति है, परंतु हमें इस दुनिया में, भौतिक दुनिया में आकर हमें ढूंढते हैं, पति ढूंढते हैं, जिस प्रकार हम श्रीमद् भागवत में कई सारे जगहों में भगवान को नाथ के रूप में हम पाते हैं, जैसे कुंती महारानी ने प्रार्थना करते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि बोलते हैं कि हे कृष्ण, आपके माता पिता देवकी और वसुदेव को जब कंस ने कारागृह में डाल दिए और मेरे पुत्र समय मुझे भी जो कौरव लोगों ने कितना सताए, कितना दुख दिए हैं, परंतु अपने हे नाथ अपने कृपा करके हमें इन सारे दुखों को, मुझे और अपने माता पिता को अपने उद्धार किया है। इस प्रकार एक शायद कुलशेखर है, मेरे को ध्यान से नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है, एक श्लोक है, उन्होंने बोलते हैं कि कदा हम ऐकांतिक नित्य किंकर, बोलते हे भगवान कब मैं आपके नित्य किंकर दास होऊंगा, फिर बोलते हैं प्रहर्ष श्यामि सुनाथ जीवितम, कब इस प्रकार मैं एक उपयुक्त स्वामी नाथ पाकर मैं चिर निवास करूंगा, चिर जीवन धारण करूंगा। गोपियां ने भी इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को नाथ के रूप में बोलते हैं। दसम स्कंद में जो रास पंचाध्याय है दूसरे श्लोक में उन्होंने बोलते हैं कि शरदुदासये सरसी जोदर श्री मृखादुषा सुरतनाथ ते अश्लुकदासिका बरद निघ्नतो नाथ ते पदम। यहाँ पर गोपियों ने भी भगवान श्री कृष्ण को सुरत नाथ थे प्रेम के नाथ के रूप में बोलते हैं। गोपियों ने बोलते हैं हे प्रेम के नाथ, शरद ऋतु के जो जलाशय में सुंदर पद्म पुष्प के बीच में जो पद्म कोष है, आपके जो सुंदर मुख कमल है ये पद्म कोष के जो कोष को भी मात कर देता है। हम लोग आपके निश्चल दासियां हैं, आपके चरण कमल की सेवा करने के लिए आए हैं, परंतु आपने हमें ठुकरा रहे हैं। कृपया हमें अपना दर्शन दीजिए और हमें इस प्रकार अपना दासी रूप में स्वीकार कीजिए। इस प्रकार हमें श्रीमद् भागवत में जो गोपियों के जो चरित्र हैं आप देखेंगे कितना शुद्ध चरित्र है। समाज में कुछ लोग होते हैं जो गोपियों के चरित्र को लेकर जो सनातन धर्म के जो फिलोसफी है, दर्शन है, उसको समझ नहीं पाते और उसमें भ्रमित हो जाते हैं, पागल की तरफ कुछ बकवास करते हैं। और इसके कारण कुछ लोग होते हैं बड़े बड़े समाज के जो शास्त्र में भाष्य लिखते हैं, टीका लिखते हैं, वो भी पागल जैसे। कुछ एक बहुत बड़ा दार्शनिक, एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध मान्यगण्य व्यक्ति हैं, वो भी बोलते हैं कि जब मैं इस प्रकार सुनता हूँ, सोचता हूँ कि भगवान नाम करी करी कृष्ण व्यक्ति थे और इस प्रकार दूसरे स्त्रियों के साथ इस प्रकार लीला विलास किए थे, तो मुझे शर्म आता है, मुख दिखाना नहीं चाहता हूँ दुनिया को। तो इस प्रकार गोपियों का जो शुद्ध प्रेम है उसको समझने के लिए उनके पास बुद्धि नहीं है। हालांकि दुनिया के दृष्टि से बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर है, दार्शनिक है, प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। जब तक व्यक्ति एक प्रामाणिक परंपरा से एक गुरु ग्रहण नहीं करता है तब तक वो व्यक्ति भ्रमित रहता है, हालांकि उसके पास कितना भी अगाध पांडित्य क्यों न हो। जब भगवान श्री कृष्ण ने बंसीवट में बंसी वादन किए, इससे पहले सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि भगवान आप तो काम है, भगवान के मन में कोई काम वासना नहीं है, फिर भी अपने शुद्ध भक्तों के साथ आनंद लेने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं भगवान। तो उन्होंने, भगवान ने इच्छा की कि अपने शुद्ध भक्तों के साथ आनंद लेंगे, तो उन्होंने क्या कि अपने जोग माया से ऐसा वृंदावन, जब से भगवान वास किए हैं तो लक्ष्मी जी का वास हो चुकी है, और फिर भी भगवान ने अपने जोग माया से सारे वृंदावन को पूरा सुशोभित कर लिए। जो वृक्षलताएं, पुष्प, जितना सारे फल फूल सब भर गए, जो पुष्पलताओं से सुंदर जो धीर समीर बहते हुए जमुना से आते हुए सारा वृंदावन में इस प्रकार सुंदर मनोरम वातावरण उत्पन्न कर रही थी। तो इस और चांदिन की रात थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंश में उत्पन्न हुए थे, तो चंद्रमा को बहुत आनंद उल्लास हो रहा था इसके कारण। तो उन्होंने बहुत सुमधुर लालिमा युक्त अपना रश्मि के साथ ये वृंदावन में प्रकट हुए थे। तो इस प्रकार बहुत मनोरम वातावरण में भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के बंसीवट के ऊपर जाकर अपना बंसी ध्वनि किए। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपना बंसी ध्वनि किए, सभी गोपियों जो जो काम अपने अपने काम में लगे हुए थे, सब कुछ वहीं की वहीं छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ते गए। हमने जैसे सुने हैं कि कुछ गोपियों, कोई गोपी ने चूल्हा में दूध उबाल रही थी, उसको वहीं छोड़ के, चूल्हा में छोड़ के चली गई, भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ती रही। किसी गोपी ने रोटी पका रही थी, चूल्हा में रोटी को छोड़कर चली गई। किसी गोपी ने दूध धो रही थी, दूध को वहीं की वहीं बाल्टी छोड़कर चली गई। किसी गोपी ने अपना पति की सेवा कर रही थी, वहीं की वहीं पति की सेवा छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की ओर चली गई। किसी गोपी ने स्नान कर रही थी, वहीं छोड़ के वहीं से चली गई। किसी गोपी ने वस्त्र धारण करे, वस्त्र क्रम को इधर उधर करके वस्त्र क्रम को वहीं से छोड़ के चले गए। इस प्रकार कुछ गोपी ने जा नहीं पा रहे, जबकि सारे गोपियों का माता पिता और अपना पति भाई आत्मीय स्वजन ने रोक रहे थे, कहाँ जा रहे हैं कहाँ जा रहे, परंतु क्योंकि उससे पहले भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का मन को हृदय को चुरा लिए हैं, तो और कौन उनको रुक सकते हैं। तो सभी गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के पास चले गए, और कुछ जो कुछ गोपियां थे उनके जो आत्मीय स्वजन थे उनको रोक रखे, और तुरंत उन्होंने भगवान को ध्यान कृष्ण के छवि को ध्यान किए। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के छवि को ध्यान किए तो समस्त प्रकार जो बाह्य दुख है, कष्ट है, सांसारिक कष्ट है, सबको पार कर गए, और फिर जो तथाकथित जो सेवा है दुनिया की सेवा उसको भी अतिक्रम कर गए। और फिर क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आत्मा की आत्मा है तो आत्मा में भगवान से जाकर मिले, यानी वहां पर अपना शरीर को त्याग दिए। तो इस प्रकार जो गोपियों का जो भाव है, यहाँ पर गोपियों का जो लक्ष्य है वो संपूर्ण रूप से शारीरिक चेतना से ऊर्ध्व में। जब तक व्यक्ति शारीरिक चेतना से ऊर्ध्व में नहीं होता, मानसिक दृष्टि से कम तब तक ये फिलोसफी समझ नहीं पाएगा और उसको हृदयंगम करेगा, अनुभूति में लाएगा, ये तो दूर की बात है। मूर्खता बस मन में जो आए सो बोल दें तो ये मूर्खता है। बड़े बड़े फिलोसोफर तक भी ये जान नहीं पाते कि क्या रहस्य है। जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके जो गुरु परंपरा अवतीर्ण जो आचार्य लोग रहे न आए, तब तक ये ज्ञान किसी व्यक्ति नहीं सब पहचान पाए, नहीं जान पाए, जबकि बड़े बड़े टीकाएं लिखते रहे। तो इस प्रकार जो गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के पास चले गए तो भगवान श्री कृष्ण ने देखे कि सब गोपियों ने आ चुके हैं, तो उन्होंने क्या किए, गोपियों को स्वागत किए बहुत सुंदर वाणी से, और स्वागत करने के बाद उनसे पूछे कि हे गोपियों तुम लोग क्यों आए हैं, तुम्हारा स्वागत है वृंदावन में, तुम लोग क्यों यहाँ आए हैं, क्या प्रयोजन है मुझे बताओ। इस प्रकार आधे रात में, और स्त्री हैं आप लोग, प्रतिवता स्त्री हैं, अपने अपने पतियों का बच्चों का इस प्रकार सेवा छोड़कर ये क्या क्यों यहाँ आए हैं इस जंगल में, और जबकि आप लोग स्त्री लोग हैं और बड़े बड़े जानवर भयानक जंगली जानवर घूम रहे हैं, तुम लोगों के लिए ये उपयुक्त स्थान नहीं है, तुम लोग वापस चले जाओ। सती स्त्री के लिए अपने पति के सेवा का अलावा और कुछ नहीं है। सती स्त्री के लिए सिर्फ पति की सेवा करने से व्यक्ति स्वर्ग उत्तम लोक को प्राप्त कर सकता है दूसरे जीवन में, परंतु तुम लोग क्या किए, इस प्रकार व्यभिचार करने से तुम लोगों को नरक गति होगा और दूसरे लोग तुम्हारा निंदा करेंगे, तुम लोग भी ठीक से जीवन धारण नहीं कर पाएंगे, तुम लोग वापस चले जाओ। अब तो तुम लोग ने देख लिए वृंदावन के सुंदर मनोरम वातावरण, और तुम लोग वापस चले जाओ, जाके अपने पतियों का सेवा करो, रोते हुए बच्चों को लालन पालन करो, बछड़ों गायों को सेवा पूजा करो, चले जाओ। तो भगवान ने इस प्रकार बोले, और बोले कि मेरे विषय में सुनने से, मेरे अर्चा विग्रह का ध्यान करने से, मेरे में ध्यान करने से और मेरे विषय में इस प्रकार बोलने से व्यक्ति मुझ में भक्ति प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकता है, लाभ कर सकता है, परंतु ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे शारीरिक सानिध्य लाभ करने से सब कुछ मिल पाएगा, ऐसे नहीं। तुम लोग अपने अपने गांव चले जाओ, अपने अपने घर लौट जाओ। जो भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार बोले, क्योंकि साधारणतः तो गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से ही प्रेम करते थे और सब कुछ उनके लिए निछावर कर दिए थे। जो भगवान श्री कृष्ण उन्हें जो इस प्रकार विरोधी वचन बोल रहे थे, गोपियों ने बहुत दुखी हो गए और उनको बहुत बड़े चिंता आ गई गोपियों के मन में। अनेक दिनों से उन्होंने इस प्रकार मन भावना रखे थे भगवान श्री कृष्ण मिलेंगे, और उन क्योंकि साधारण बात नहीं है, गोपियां जो थे बहुत उच्च स्तर थे, हम मन में या बुद्धि में हम सोच भी नहीं पाएंगे किस स्तर में गोपियां थे और कितने दिनों से भगवान से प्रेम करते थे, और उन्हीं को अभी प्राप्त कर चुके हैं और भगवान श्री कृष्ण उनको इस प्रकार बोल रहे हैं। गोपियां के हृदय में बहुत पीड़ा होने लगे और आंखों से आंसू गिरने लगे और मुख नीचा कर दिए और इस प्रकार भूमि को कुरेदने लगे और आंखों से आंसू गिरते हुए उनका वक्षस्थल भीग कर इस प्रकार गोपियों ने कुछ समय तक खड़ी रही वहीं पर। बाद में बहुत मुश्किल से अपने आंखों से आंसू पूछ कर कृष्ण से बोलते हैं कि हे कृष्ण, आपको इस प्रकार हमें अशुभ वचन नहीं बोलना चाहिए, हमें इस प्रकार नहीं ठुकराना चाहिए, क्योंकि आपसे प्रेम करने के लिए, आपको प्राप्त करने के लिए हमें अनेक दिनों से बहुत कुछ इस प्रकार निछावर किए हैं, त्याग किए हैं, अपने समस्त प्रकार भोग ऐश्वर्य को त्याग कर चुके हैं, आत्मीय संजनों को त्याग कर चुके हैं, परंतु आपने हमें इस प्रकार ठुकरा रहे हैं। आप हमें इसी प्रकार प्रेम कीजिए जिस प्रकार भगवान नारायण ने अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। तो भगवान को गोपियों ने इस प्रकार रोट होकर प्रेम भाव से बोलते हैं। आप बड़े बड़े विद्वान के, बड़े बड़े विद्वान जो होते हैं वो आपसे प्रेम करते हैं और आपको पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते रहते हैं, जबकि हम आपको प्राप्त कर चुके हैं, आपके सानिध्य में आ चुके हैं, आप हमें मना कर रहे हैं, इस प्रकार ठुकरा रहे हैं। क्यों? आप तो सभी आत्माओं के आत्मा है, जो भी कोई जीवात्मा सबसे घनिष्ठ मित्र हैं आप, जो सारे सेवा अपने हमें बोले कि हम अपने पतियों का, बच्चों का, अपने आत्मीय स्वजन का सेवा करने के लिए, जो भी पति जो सेवा है उनके प्रति जो सेवा है, ये सेवा वास्तव में आपकी ही की जानी चाहिए, क्योंकि आप ही सर्वाधिक और घनिष्ठ बंधु है सभी जीवात्मा के, आत्मा के आत्मा है। तो हमें वास्तव में सभी जीवात्मा आपको ही प्रेम करना चाहिए। ये जो शरीर है, जो पति पुत्र आत्मस्वजन के रूप में है, ये तो शरीर वस्त्र है, मात्र है, प्रकृति गुणों के द्वारा प्रदान की गई वस्त्र है, स्वभाव में सभी आपके दास दासियां हैं, परंतु आप हमें इस प्रकार क्यों बोल रहे हैं, हमें कृपया आपके दासी के रूप में स्वीकार कीजिए। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जो सुने गोपियों का वचन, और भी गोपियों ने बहुत सारी चीजें बोलते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सुनते रहे, गोपियों ने जब इस प्रकार बोलते रहे तो कृष्ण ने कुछ बातें उनको बोले गोपियों को। तब गोपियों ने कृष्ण को जिस प्रकार बोले, गोपियों ने बोले, हे कृष्ण, आप हमें इस प्रकार जो प्रेम हमें ठुकराना नहीं चाहिए, आप हमें आपका आश्रय दीजिए, आप प्रति के रूप में ग्रहण कीजिए। एक भक्त ने इस प्रसंग में मुझे एक कहानी बताते थे, तो आप लोग शायद सुने होंगे। तो वो बता रहे थे कि एक पतिव्रता स्त्री ने अपना पति को बहुत प्यार करती थी। जब पति कभी बाहर जाने लगी, विदेश में जाने लगी, तो उनको असह्य होने लगी। तो उन्होंने स्त्री पतिव्रता स्त्री ने चाहिए कि उनके जो प्रतिछवि को पूजा करने के लिए, तो पतिव्रता स्त्री ने प्रत्येक दिन अपना पति का जो छवि को पूजा करती रही। तो उस समय उसके बाद उन्होंने भोजन करती थी, बहुत मन ध्यान भक्तिभाव से पूजा करती थी। कुछ दिनों तक इस करती रही, जब अपना पति वापस घर आए तो उस समय में वो पूजा करने बैठी थी। तो गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे कृष्ण, आप बताओ कि वो पतिव्रता स्त्री के लिए अब क्या कर्तव्य है, वो कृष्ण को, अपने पति को स्वागत करें या पूजा अर्चना करते रहे प्रतिछवि को। तो कृष्ण ने बोले, हे गोपियां, उसके लिए एक ही काम जरूरी होता है कि वह अपना पति को स्वागत करे, अपना पति का स्वागत करे। तो गोपियों ने बोले, ठीक उसी प्रकार हमारा जो पतियां हैं उसी प्रकार है, आप तो वास्तव में असल पति हैं हमारा, और जारे जो पतियां हैं दुनिया में संसार में वो तो उस प्रकार प्रतिबिंब जैसे हैं, छाया जैसे हैं, तो आप हमें इस प्रकार क्यों ठुकरा रहे हैं? इस प्रकार गोपियां ने भगवान श्री कृष्ण को बोले थे। तो हमें देखते हैं कि हर दृष्टि से हम देखेंगे कि किस प्रकार हम भगवान से अपना असल नाथ या पति से भूल चुके हैं और इस संसार में आकर हमें असहाय होकर अपने को एक सुरक्षा प्राप्त करने के लिए इस प्रकार हमें व्यवस्था करते रहते हैं और हमें इस प्रकार आचार व्यवहार करते हैं इस दुनिया में। हम देखते हैं कोई कोई अपना व्यवहार से पता लग जाता है व्यक्ति कितना हेल्पलेस है, फोन में बातचीत में व्यवस्था करने में दिन रात दौड़ धपड़ करते रहता है। तो इस प्रकार इस दुनिया में हमें कितना दुख कष्ट उठा रहे हैं। भगवान ने इस प्रकार आकर ही वृंदावन में विभिन्न प्रकार लीला सुंदर सुंदर लीला करते हैं ताकि हमें इस प्रकार आह्वान करते हैं जीवात्मा, क्यों इस दुनिया में सड़ रहे हैं आप लोग, तुम लोग मेरे धाम में वापस आ जाओ, इस प्रकार सुंदर सुंदर लीलाओं में भाग ले सकते हैं। तुम्हारा स्वाभाविक स्थिति वही है परंतु तुम लोग अज्ञान के कारण इस दुनिया में स्वतंत्र रूप से इंद्रिय भोग करने के लिए सब प्रकृति के साथ संघर्ष कर रहे हैं। इस प्रकार जो व्यर्थ मन भावना त्याग दो और मेरे पास वापस आ जाओ। इस प्रकार भगवान ने हमें शास्त्रों के माध्यम से गुरु के माध्यम से अपने सुंदर सुंदर लीलाओं के माध्यम से हम आह्वान करते हैं कि आओ और इस प्रकार जो ज्ञान है इसको इसका लाभ उठाओ और भगवान का जीवन सेवा करो, जीवन का सार्थक करो। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है तो एक प्रश्न है। जैसे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, हिताय गौर प्रेमानंदे।